लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि निकट पूर्व में वार्ता, साक्षात्कार और पुनर्मिलन की भावना उभरे, जहां विविध धार्मिक समुदाय एक साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं के संबंध में धर्माधीक्षकों की धर्माध्यक्षीय धर्म सभा 2018 युवा विश्वास और बुलाहटीय मंथन पर एक चर्चा सुन रहे हैं। युवाओं की धर्म सभा के तीसरे भाग वे शीघ्रता से चल पड़े में हम युवा कलीसिया और कलीसिया में युवाओं का जिक्र कर रहे हैं। श्रोताओं, यह हमारा संबंध है जिसके फलस्वरूप हम यीशु ख्रिस्त और अन्यों से अपने विश्वास का आदान प्रदान करते हैं। प्रेरिताई कार्य के निष्पादन में भी कलीसिया से इस बात की मांग की जाती है कि वह अपने संबंध में प्रवेश करे, जो सुनने, स्वागत करने, वार्ता और एक साथ मिलकर आत्म परीक्षण के द्वारा संभव होती है, जो इसमें सहभागी होने वालों के जीवन में परिवर्तन लाता है। एक धर्म सभा वाली कलीसिया वह कलीसिया है जो सुनती है, जो अपने में इस बात का अनुभव करती है कि सुनना अपने में केवल कानों से सुनना मात्र नहीं, वरन उस सुनने में कहे जाने वाले निहित अर्थ को गहराई से समझना है। यह अपने में आपसी सहभागिता की बात बयां करती है, जहां सबों के लिए सीखने हेतु कुछ चीजें हैं। कलीसिया के विश्वासी धर्माधीक्षकों की मंडली रोम के धर्माध्यक्ष सभी एक दूसरे को सुनते हैं, और सुनने के इस क्रम में हम पवित्र आत्मा की बातों को सुनने का प्रयास करते हैं, जो सत्य का आत्मा है, जिससे हम यह जान सकें कि वह कलीसिया को क्या संदेश देना चाहते हैं। इस भांति कलीसिया अपने को एक मिलन स्थल के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां विधान की मंजूषा रखी गई थी। कलीसिया अपने में शक्ति संपन्न है, जो हमारे जीवन की यात्रा में हमारे साथ चलती और हमें अपने प्रेरितिक कार्यों और अपने आदर्शों से सबल बनाती है। कलीसिया के ऐसे कार्य हमें विश्व में ईश्वर की उपस्थिति को देखने में मदद करते हैं। श्रोताओ, कलीसिया की कार्य शैली में हम एक विशेष स्वरूप को देखते हैं, जहां हम उसके मूल्यों को पवित्र आत्मा के आदर्शों के अनुरूप पाते हैं, जो कलीसिया के सभी विश्वासियों को उनकी बुलाहट के अनुरूप विशेष रूप से सह उत्तरदायी होने हेतु प्राप्त हुआ है। कलीसिया के कार्यों को अपने जीवन के द्वारा पूरा करने हेतु हमें अपने में हृदय परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। साथ ही हमें एक दूसरे को सुनने की जरूरत है, जो हमें एक मन और एक हृदय के रूप में प्रभावशाली बनने हेतु मदद करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हम अपने जीवन में कलीसिया के प्रेरितिक सहभागी और सह उत्तराधिकारी होते हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपनी विभिन्नताओं में धनी होने की बात को स्वीकारते उन्हें लोक धर्मियों और यहाँ तक कि युवाओं तथा समर्पित जीवन यापन करने वालों और विभिन्न संघों तथा आंदोलनों में साझा करते हैं। ऐसा करने के द्वारा हम अपने को याजकीयवाद से बचाए रखते हैं, जहाँ वे बहुत सी बातों के संबंध में निर्णय लेने हेतु अपने को अलग कर लेते हैं। वहीं लोक धर्मियों का याजकीयवाद से प्रभावित होना उन्हें दुनिया में प्रेरितिक कार्यों के निष्पादन हेतु अपने विचारों को व्यक्त करने के बदले सभी बातों में याजकों में आश्रित कर देता है। धर्म सभा इस बात की मांग करती है कि युवा कलीसिया की प्रेरिताई और सह उत्तरदायित्व के निर्वहन में सक्रिय रूप से भाग लें। यह इस बात की भी मांग करती है कि युवा का विभाग और युवा संघ, परिवार और जीवन अपने में मजबूत किए जाएं, जिससे कम से कम किसी एक युवा को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कार्यक्रमों की सहभागिता हेतु तैयार कर सकें। ईश प्रजा के रूप में एक साथ चलने की हमारी अनुभूति हमें अपने सेवा हेतु मिले अधिकारों को अधिक गहराई से समझने में मदद करती है। प्रेरितों के रूप में हमें साक्ष्य और प्रेरिताई में सहयोग करते हुए एक साथ मिलकर आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया में साथ देने की आवश्यकता है, ताकि विश्वास के प्रकाश में और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में समय की मांग और संकेत के अनुरूप हम चीजों का चुनाव और उनका व्याख्यान दे सकें, विशेषकर उनके लिए जो हाशिए में पड़े हुए हैं। कलीसिया के अगुओं में इन योग्यताओं के साथ एक विशेष सिनोडालिटी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस प्रशिक्षण में हमें चाहिए कि हम युवाओं के लिए एक मिश्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करें, जो युवा लोक धर्मियों, युवा धर्म समाजों और गुरुकुल के विद्यार्थियों के लिए हो, जहां हम खास रूप से अपने अधिकारों या सहभागिता की प्रेरिताई का उपयोग कर सकते हैं। श्रोताओ, कलिस्से की सिनोडालिटी का शाब्दिक अर्थ है एक साथ चलना, प्रभु से प्राप्त सांत्वना द्वारा साहस के साथ आगे बढ़ना, जहां हम एक दूसरे की आंखों में नजरें डालते और एक दूसरे को सुनते हुए ईमानदारी से कठिनाइयों को छिपाए बिना सेवा के लिए एक साथ चलने की सुंदरता का अनुभव करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो हमें प्रेरिताई कार्य हेतु अग्रसर करता है। यह हमारे लिए ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का तरीका है, जहां हम ईश्वर और सारी मानव जाति के साथ अपने को एकता में संयुक्त करते हैं, जब तक सब कुछ ईश पुत्र के अधीन ना हो जाए। युवा पवित्र आत्मा के लिए अपने को खुला रखते हुए कलीसिया के पास का रहस्य को मैं से बाहर हम की ओर ले जाते हैं, जहां हम व्यक्तिगत स्वार्थ से बाहर निकलते हुए कलीसिया की सामुदायिकता में प्रवेश करते हैं, जहां सभी मैं का केंद्र बिंदु यीशु ख्रिस्त बनते हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपने भाई बहनों के साथ रहते और ईश प्रजा हेतु अपने को एक उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा और धर्माधिशकों के निर्देशन में ये मनोभाव ख्रिस्तीय समुदाय का अंग बने, जहां हम व्यक्तिगत चाहतों से बाहर निकलने हेतु बुलाए जाते हैं, जिससे हम पूरी मानवता और सारी सृष्टि के निर्माण हेतु कार्य कर सकें। प्रेरिताई में वार्ता की गतिशीलता के ठोस परिणाम है, क्योंकि जिस तरह से प्रेरिताई कार्य का संचालन युवा लोगों के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है, हमें किसी के साथ कोई समझौता किए बिना अपने को पूर्ण रूपेण नेक विचारों को धारण करने वाले सभी पुरुषों और महिलाओं से अच्छी तरह वार्ता करने की आवश्यकता होती है। संत पापा पॉल छठवें इसके संबंध में कहते हैं, कलीसिया को कुछ कहना है, एक संदेश देना है, एक वार्ता करनी है। विश्व में जहां हम विभिन्न तरह के लोगों और संस्कृतियों की विभिन्नता को देखते हैं, एक साथ चलना अपने में एक आधारशिला बनती है, जिसकी पहल एकता, एकात्मकता और न्याय के प्रसार अनुरूप किया जाता, जो अपने में विश्वसनीय और प्रभावकारी होते हैं। यह अपने में संस्कृति के मिलन और हमारे खुले सहृदयता को प्रकट करती है। युवा अपने रोज दिन के जीवन में अपने हम जोलियों के साथ जीवन यापन करते हैं, जो दूसरे ख्रिस्तीय समुदाय के साथ, दूसरे अन्य धर्मों, विश्वास और संस्कृति के लोगों के साथ रहते हैं, जो पूरे ख्रिस्तीय समुदाय को अंतर धार्मिक और अंतर कलीसियाई वार्ता को जीने में मदद करती है। यह हमारे विचार अभिव्यक्ति में साहस की बात और सुनने में नम्रता के भाव को व्यक्त करती है, जो हमारे जीवन में तप और शहादत की अभिव्यक्ति है।
हे पिता, तू कितना भला। आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 5 नवंबर के ट्वीट संदेश में कहा, जीवन में कई बार हम निर्णय करने के उस मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें निर्णय करना होता है कि प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करें अथवा अपनी ही चीजों, अपने छोटेपन में बंद रहें। प्रभु से कृपा की याचना करें कि हम भोज में उनके निमंत्रण को स्वीकार कर सकें जो हमारे लिए मुफ्त है। संत पापा फ्रांसिस ने उदासीन होकर अपने आप में बंद रहने को पाप कहा। मंगलवार को वैटिकन के प्रेरितिक आवास संत मार्था के प्रार्थनालय में क्रिसदाग अर्पित करते हुए संत पापा ने कहा, प्रभु हमें भोज के लिए निमंत्रण देते हैं जो उनके साथ मुलाकात करना है, किंतु हमारे इनकार करने के कारण वे गरीबों और बीमार लोगों को निमंत्रण देते हैं ताकि वे भी भोज का आनंद उठा सकें। संत पापा ने प्रवचन में संत लूका रचित सुसमाचार पर चिंतन करते हुए आत्म जांच करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, मैं क्या पसंद करता हूँ? क्या मैं प्रभु के निमंत्रण को हमेशा स्वीकार करता हूँ अथवा अपनी ही चीजों में अपने आप को बंद कर लेता हूँ? सुसमाचार पाठ में एक व्यक्ति भोज का आयोजन करता है तथा अतिथियों को भोज में निमंत्रण देता है, किंतु वे अपना अपना कारण बताकर उनका निमंत्रण अस्वीकार कर देते हैं। तब वह नौकरों को, गरीबों और बीमारों को निमंत्रण देने का आदेश देता है जो उनके घर को भर देते तथा भोज का आनंद उठाते हैं। संत पापा ने उपदेश में मुक्ति इतिहास का सारांश बतलाते हुए अनेक ख्रिस्तों के व्यवहारों पर प्रकाश डाला। संत पापा ने कहा, भोज स्वर्ग का प्रतीक है, प्रभु के साथ अनंत जीवन का प्रतीक। भोज में हम नहीं जानते कि किन से मुलाकात करेंगे। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी और कुछ ऐसे लोगों से भी जिन्हें हम देखना पसंद नहीं करते, किंतु भोज में आनंद और मुफ्त में ग्रहण करने का वातावरण होता है, क्योंकि एक सच्चे भोज को मुफ्त होना चाहिए जिसके लिए प्रभु हमेशा हमें निमंत्रण देते हैं। इसके लिए हमें टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। भोज में मेजबान ही निमंत्रित लोगों के खर्च का मूल्य चुकाता है, किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुफ्त में ग्रहण करना नहीं चाहते और अपनी रुचि को पहला स्थान देते हैं। संत पापा ने कहा, क्या स्वीकार करने का यह मनोभाव उनके हृदय को बंद कर देता है और वे कहते हैं, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, सिर्फ उन लोगों के साथ जो मेरे करीब हैं। संत पापा ने कहा कि यह पाप है, इसराइली लोगों का पाप और बंद रहने के कारण हम सभी का पाप। हम कहते हैं कि मेरे लिए ये चीज अधिक महत्वपूर्ण है, हमेशा मेरा को ध्यान देते हैं। संत पापा ने कहा कि अस्वीकृति प्रभु से यह कहने का प्रयास है कि मुझे अपने भोज से परेशान ना करें, और ऐसा करने के द्वारा हम प्रभु के आनंद को इनकार करने का प्रयास करते हैं जो हमें उनकी मुलाकात में मिलती है। जीवन की यात्रा में अक्सर हमें इसी तरह के चुनाव करने पड़ते हैं कि हम प्रभु के मुफ्त निमंत्रण को स्वीकार करें, उन्हें खोजने और उनसे मुलाकात करने जाएं, अथवा अपनी ही चीजों और रुचियों में बंद रहें। यही कारण है कि प्रभु कहते हैं कि धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, क्योंकि वे अपने धन में ही व्यस्त रहते और वे भोज का मूल्य नहीं समझते। वे अपने धन में ही अपनी सुरक्षा समझते हैं, किंतु कुछ धनवान ऐसे भी होते हैं जो धन से आसक्त नहीं होते। संत पापा ने कहा, हमारे इनकार करने पर प्रभु भले और बुरे हर प्रकार के लोगों को निमंत्रण देते हैं, अतः कोई नहीं कह सकता कि मैं बुरा हूँ। यदि हम बुरे हैं तो प्रभु खास रूप से हमारा इंतजार करते हैं और हमें उसी तरह अपना लेते हैं जैसा कि उड़ाव पुत्र के पिता ने उसके माफ मांगने से पहले ही उसे गले लगा लिया। और पहले पाठ में संत पौलुस ढोंगियों को फटकारते हैं जिन्होंने यीशु को त्याग दिया था क्योंकि वे अपने आप को अधिक धर्मी मानते थे। यीशु ने एक बार कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ, नाकेदार और पापी स्वर्ग राज्य में तुमसे आगे होंगे। संत पापा ने कहा कि प्रभु सभी को प्यार करते हैं और बुलाते हैं, किंतु हमारे द्वारा अस्वीकार किए जाने पर वे नाराज होकर दूसरे लोगों की ओर बढ़ते हैं। अतः संत पापा ने विश्वासियों को निमंत्रण दिया कि वे आज के दृष्टांत पर चिंतन करें। उन्होंने कहा, हम गौर करें कि हमारा जीवन कैसा है, मैं क्या पसंद करता हूँ, क्या मैं प्रभु के निमंत्रण को हमेशा स्वीकार करता हूँ अथवा अपनी ही चीजों में व्यस्त रहता हूँ। हम प्रभु से कृपा मांगे कि हम सदा उनके मुफ्त भोज में भाग ले सकें। संत पापा फ्रांसिस 20 से 26 नवंबर को थाईलैंड एवं जापान की प्रेरितिक यात्रा करेंगे। एशिया महादेश में संत पापा फ्रांसिस की यह चौथी और विश्व भर में 32वीं प्रेरितिक यात्रा होगी। थाईलैंड के मिशनरी फादर राफाइल संदोना ने संत पापा फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा का देश में महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की 1984 में थाईलैंड की पहली यात्रा के 35 वर्षों बाद संत पापा फ्रांसिस द्वारा यह दूसरी यात्रा होगी। प्रेरितिक यात्रा की विषय वस्तु है ख्रिस्त के शिष्य मिशनरी शिष्य। इस साल सियाम प्रेरितिक विकारियट की स्थापना की 350वीं वर्षगांठ होगी, जिसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी। थाईलैंड में 66 मिलियन आबादी के बीच कैथोलिकों की संख्या 0.5% है, जबकि बौद्ध लोगों की संख्या 90% है। मुसलमानों की संख्या 4% और ख्रिस्तियों की कुल संख्या 1% है। 350 वर्षों में कैथोलिक कलीसिया का विस्तार 11 धर्म प्रांतों में हुई है, जिसकी कुल संख्या 390,000 है। चियांग माई धर्म प्रांत थाईलैंड के उत्तरी भाग में है, जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी। फिदेस दोनों के कुछ इताली पुरोहित चाये होम और लामफून में वर्षों से सेवा दे रहे हैं। लातिनी शब्द फिदे दोनों का अर्थ है विश्वास का वरदान, जिसको 1957 में संत पापा पियूस 12वें द्वारा प्रकाशित विश्व पत्र से लिया गया है। इस प्रेरितिक विश्व पत्र के माध्यम से संत पापा पियूस 12वें ने सभी धर्मदर्शकों को एक दूसरे की मदद न केवल प्रार्थनाओं द्वारा बल्कि अन्य साधनों और अपने पुरोहितों को दूसरे देशों में उपलब्ध कराने के द्वारा सहायता पहुंचाने का आह्वान किया था। फादर राफाइल संदोना इटली के पादुआ धर्म प्रांत के हैं, जो 10 सालों से थाईलैंड में सेवा दे रहे हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।